ورحمة الله وبركاته. تعب لعين تعب. آئیے اصل صاحب اپنا اثر اندازی دکھائیے. اصل سے کہہ رہا ہوں کہ اثر اندازی دکھائیے.
ایک قطع جو پچھلی دفعہ سنایا تھا اکثر احباب نے بہت حوصلہ افزائی کر لائی. دوبارہ
بے حیائی دے رہا ہے جو پردے سے رہائی دے رہا ہے وہ درتے بے حیائی دے رہا ہے. کہیں مشرق کو لے ڈوبے نہ مغرب, کہیں مشرق کو لے ڈوبے نہ مغرب, مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے.
نظم ہے, عنوان ہے, آج کے نوجوان سن لے میری کہاں. آج کے نوجوان سن لے میری کہاں, سوئے دشت و دمن تاریخ صاحباں, سوئے دشت و دمن تاریخ صاحباں, تو چلا ہے کہاں چھوڑ کر گلستاں. کیوں تجھے راس آئی ہے فصل خزاں, تو جدھر ہے رواں خار ہے بس کہاں. آج کے نوجوان سن لے میری کہاں. بال انگریز جیسے کٹائے ہوئے, منہ چھت سے زیادہ بڑھائے ہوئے, بال انگریز جیسے کٹائے ہوئے, منہ چھت سے زیادہ بڑھائے ہوئے, اور داڑھی کو بالکل منڈائے ہوئے, کیا مسلمان کے ہے یہ شایا نشاں. آج کے نوجوان سن لے میری کہاں. اور کب تلک دارے پانی کے عیش و طرب, کب تلک دارے پانی کے عیش و طرب, ختم کب ہوگی آخر یہ تاریخ شب, ختم کب ہوگی آخر یہ تاریخ شب. روشنی میں آ اور خود کو پہچان اب, تجھ کو شاید کہ مل جائے اپنا نشان. آج کے نوجوان سن لے میری کہاں, تو حسینوں کے چکر میں پھرتا ہے کیوں. ایسے والا کمل خوب. تو حسینوں کے چکر میں پھرتا ہے کیوں, تجھ کو ہرگز ملے گا نہ اس میں سکون, تجھ کو برباد کر دے گا تیرا جنون. ہے تیرے سامنے ذلتوں کا کنواں, آج کے نوجوان سن لے میری کہاں. اور تجھ کو دیتا ہوں اللہ کا واسطہ, تجھ کو دیتا ہوں اللہ کا واسطہ, ترک کر اب تو تجویز خود ساختہ, تو نے اپنا لیا غیر کا راستہ, تجھ کو بننا تھا اسلام کا پاسبان. آج کے نوجوان سن لے میری کہاں, تجھ کو بننا تھا اسلام کا پاسبان. اور تو جو سامان کرتا ہے کل کے لیے, تو جو سامان کرتا ہے کل کے لیے, یہ بھی سوچا کبھی ایک پل کے لیے, تو جو سامان کرتا ہے کل کے لیے, یہ بھی سوچا کبھی ایک پل کے لیے, کچھ رکھا بھی ہے وقت اجل کے لیے, کچھ رکھا بھی ہے وقت اجل کے لیے, یا فقط پیاس اور یا تو محرومیاں. آج کے نوجوان سن لے میری کہاں. اور میں نے مانا ابھی تو معمر نہیں, میں نے مانا ابھی تو معمر نہیں, موت کا وقت لیکن مقرر نہیں. میں نے مانا ابھی تو معمر نہیں, موت کا وقت لیکن مقرر نہیں, دار فانی ہے رستہ کوئی گھر نہیں, دار فانی ہے رستہ کوئی گھر نہیں, تو مسافر ہے دنیا ہے سائباں. آج کے نوجوان سن لے میری کہاں. تو مسافر ہے دنیا ہے ایک صاحباں, آج کے نوجوان سن لے میری کہاں. اور اونچے اونچے محل جو بنائے ہیں یہ, اونچے اونچے محل جو بنائے ہیں یہ, گھر نہیں در حقیقت سرائے ہیں یہ. اونچے اونچے محل جو بنائے ہیں یہ, گھر نہیں در حقیقت سرائے ہیں یہ, ہرگز اپنے نہیں ہے پرائے ہیں یہ, ہرگز اپنے نہیں ہے پرائے ہیں یہ, بات تیرے کوئی اور ہوگا یہاں. آج کے نوجوان سن لے میری کہاں. اونچے اونچے محل جو بنائے ہیں یہ, گھر نہیں گھر حقیقت سرائے ہیں یہ, ہرگز اپنے نہیں ہیں پرائے ہیں یہ, بات تیرے کوئی اور ہوگا یہاں. اور وقت ٹی وی بنا پاس ہوتا نہیں, وقت ٹی وی بنا پاس ہوتا نہیں, دور سر سے یہ خناس ہوتا نہیں, دور سر سے یہ خناس ہوتا نہیں, تجھ کو غفلت کا احساس ہوتا نہیں. وقت ٹی وی بنا پاس ہوتا نہیں, دور سر سے یہ خناس ہوتا نہیں, تجھ کو غفلت کا احساس ہوتا نہیں, کہیں ایسا نہ ہو پھٹ پڑے آسمان. آج کے نوجوان سن لے میری کہاں. کہیں ایسا نہ ہو پھٹ پڑے آسمان. اور میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش, میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش, عاشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش. میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش, عاشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش, پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش. میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش,
आशिकी के फसानों में भी है कशिश, पर बता कुछ अजानों में भी है कशिश, तुझको आवाज देता है रब्बे जहां, आज के नौजवान सुन ले मेरी पवन। मैंने माना कि गानों में भी है कशिश, आशिकी के फसानों में भी है कशिश, पर बता कुछ अजानों में भी है कशिश, तुझको आवाज देता है रब्बे जहां, आज के नौजवान सुन ले मेरी पवन। और तुझको शायद कि ये बात मालूम है, तुझको शायद कि ये बात मालूम है, टखने घटना शरीयत में मज़मूम है। तुझको शायद कि ये बात मालूम है, टखने घटना शरीयत में मज़मूम है, नजर रहमत से वो शख्स महरूम है, नजर रहमत से वो शख्स महरूम है, जिसके टखने रहे पाएजों से नहां, आज के नौजवान सुन ले मेरी पवान। और दाढ़ी रखना ये माना है मुश्किल मगर, दाढ़ी रखना ये माना है मुश्किल मगर, रोजे महशर ये आका ने पूछा अगर, सल्लल्लाहु तआला। दाढ़ी रखना ये माना है मुश्किल मगर, रोजे महशर ये आका ने पूछा अगर, मेरी सूरत में क्या नुक्स आया नजर, क्या कहेगा जवाबन बता तू वहाँ, आज के नौजवान मेरी पवान। दाढ़ी रखना ये माना है मुश्किल मगर, दाढ़ी रखना ये माना है मुश्किल मगर, रोज़े महशर ये आका ने पूछा अगर, रोज़े महशर ये आका ने पूछा अगर, मेरी सूरत में क्या नुक्स आया नजर, क्या कहेगा जवाबन बता दू वहाँ, आज के नौजवान सुन ले मेरी पवान। क्या दाढ़ी रखना ये माना है मुश्किल मगर, दाढ़ी रखना ये माना है मुश्किल मगर, रोज़े महशर ये आका ने पूछा अगर, मेरी सूरत में क्या लुत्फ आया नजर, क्या कहेगा जवाबन बता तू वहाँ, आज के नौजवान सुन ले मेरी पवान। और ये वजह है कि इबलीस मर्दूद है, ये वजह है कि इबलीस मर्दूद है, वो मगर वसवसों तक ही महदूद है। ये वजह है कि इबलीस मर्दूद है, वो मगर वसवसों तक ही महदूद है, और तेरे पास तो अक्ल मौजूद है। ये वजह है कि इबलीस मर्दूद है, वो मगर वसवसों तक ही महदूद है, और तेरे पास तो अक्ल मौजूद है, तेरे अंदर है इदरा के सूदो ज़ियां, आज के नौजवान सुन ले मेरी। ये वजह है कि इबलीस मर्दूद है, वो मगर वसवसों तक ही महदूद है, और तेरे पास तो अक्ल मौजूद है, तेरे अंदर है इदरा के सूदो ज़ियां, आज के नौजवान सुन ले मेरी फ़ग़ां। और करता दुनिया की हर बात में पहल है, करता दुनिया की हर बात में पहल है, दीन की बात आए तो नाअहल है। करता दुनिया की हर बात में पहल है, दीन की बात आए तो नाअहल है, दीन की बात आए तो नाअहल है, सारे दुनिया तेरे वास्ते पहल है, सारे दुनिया तेरे वास्ते पहल है, इत्तबाए शरीयत है बारे गिराऊं, आज के नौजवान। करता दुनिया की हर बात में पहल है, दीन की बात आए तो नाअहल है, करता दुनिया की हर बात में पहल है, दीन की बात आए तो नाअहल है, सारे दुनिया तेरे वास्ते सहल है, इत्तबाए शरीयत है बारे गिराऊं। और तू जो हीला बनाता है हालात का, तू जो हीला बनाता है हालात का, मैं तो कायल नहीं इन ख्यालात का। तू जो हीला बनाता है हालात का, मैं तो कायल नहीं इन ख्यालात का, तुझको शायद कहे इल्म इस बात का, अहले दिल खुद बनाते हैं अपना जहां, आज के नौजवान सुन ले मेरी पवान। तुझको तू जो हीला बनाता है हालात का, माहौल का, तू जो हीला बनाता है हालात का, मैं तो कायल नहीं इन ख्यालात का, तुझको शायद कहे इल्म इस बात का, अहले दिल खुद बनाते हैं अपना जहां, आज के नौजवान सुन ले मेरी पवान। तू जो हीला बनाता है हालात का, तुझको तू जो हीला बनाता है हालात का, मैं तो कायल नहीं इन ख्यालात का, तुझको शायद कहे इल्म इस बात का, अहले दिल खुद बनाते हैं अपना जहां, आज के नौजवान। और देखें कि उम्मत मुस्लिमा पर तो बन आई है, उम्मत मुस्लिमा पर तो बन आई है, और तू गेंद बल्ले का शहद आई है। उम्मत मुस्लिमा पर तो बन आई है, और तू गेंद बल्ले का शहदाई है, तुझ पे क्यों इस कदर बेहिसी छाई है, और तू गेंद बल्ले का शहजाई है, इसके क्यों इस कदर बेहिसी छाई है, क्यों नहीं लेता हाथों में तीरो कमां, आज के नौजवान सुन ले मेरी कुरान। उम्मते मुस्लिमों पर तो बन आई है और तू गेंद बल्ले का शहजाई है, इसके क्यों इस कदर बेहिसी छाई है, क्यों नहीं लेता हाथों में तीरो कमां, आज के नौजवान सुन ले मेरी कुरान। और खुद को महफूज कर कोई दीवार उठा, खुद को महफूज कर कोई दीवार उठा, अब बहुत हो चुकी अब तो हथियार उठा। खुद को महफूज कर कोई दीवार उठा, अब बहुत हो चुकी अब तो हथियार उठा, ये भी सुन्नत है हाथों में तलवार उठा, ये भी सुन्नत है हाथों में तलवार उठा, वरना मिट जाएगा तेरा नामो निशान, आज के नौजवान सुन ले मेरी कुरान। और मिसले करकस न बन बादशाही है तू, मिसले करकस न बन बादशाही है तू, हक ये है दीन हक का सिपाही है तू, हक ये है दीन हक का सिपाही है तू, अहल बातिल के हक में तबाही है तू, आगे बढ़ टूट पड़ मिसले बरसे तपा, आज के नौजवान सुन ले मेरी कुरान। और है तवक्कल तेरा सिर्फ अल्लाह पर, है तवक्कल तेरा सिर्फ अल्लाह पर, नक्श पाए नबुवत तेरी रह गुजर, नक्श पाए नबुवत तेरी रह गुजर, इब्ने कासिम और टीपू तेरे राहगर। है तवक्कुल तेरा सिर्फ अल्लाह पर, नक्श पाए नबुवत तेरी रह गुजर, इब्ने कासिम और टीपू तेरे राहगर, सूए मंजिल रवा है तेरा कारवां, आज के नौजवान। और रब की नुसरत तेरे साथ है बिल यकीन, आखिरी बंदे, रब की नुसरत तेरे साथ है बिल यकीन, जान की इसलिए जिसको परवाह नहीं, रब की नुसरत तेरे साथ है बिल यकीन, जान की इसलिए जिसको परवाह नहीं, तेरा मस्कन है दर असल खुल्दे बरीन, तेरा मस्कन है दर असल खुल्दे बरीन, तेरी मुश्ताक है कब से हूरे जना, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगान। और एक बंद और है इसमें के आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगान, मैं बताऊं तेरी खस्ता हाली का हल, मैं बताऊं तेरी खस्ता हाली का हल, नफ्स शैतान के जाल से अब निकल, मैं बताऊं तेरी खस्ता हाली का हल, नफ्स शैतान के जाल से अब निकल, छोड़ कांटों का माहौल गुलशन को चल, मैं बताऊं तेरी खस्ता हाली का हल, मैं बताऊं तेरी खस्ता हाली का हल, नफ्स शैतान के जाल से अब निकल, छोड़ कांटों का माहौल गुलशन को चल, जिंदगी का सही लुत्फ पाए जहां, आज के नौजवान सुन ले मेरी कुरान। मैं बताऊं तेरी खस्ता हाली का हल, मैं बताऊं तेरी खस्ता हाली का हल, नफ्स शैतान के जाल से अब निकल, छोड़ कांटों का माहौल गुलशन को चल, जिंदगी का सही लुत्फ पाए जहां, आज के नौजवान सुन ले मेरी कुरान। दाढ़ी रखना ये माना है मुश्किल, मगर रोजे महशर ये आका ने पूछा अगर, मेरी सूरत में क्या नुक्स आया नजर, क्या कहेगा जवाबन बता तू वहाँ, आज के नौजवान होंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. سورة الملك إن آيات کی تلاوت پیش کی. آج کا جمعہ جو ہے اس ماہ مبارک رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے. چاند دکھائی دے آنے دکھائی دے بس یہ آخری جمعہ ہے، بات پکی ہے. اس میں ذرا بھی کوئی بات کچی نہیں ہے، یہ آخری جمعہ ہے. اللہ تعالی آئندہ سال پھر ہم سب کو رمضان شریف کا جمعہ دکھائے گا. تقریر سے پہلے دو سوال کرتا ہوں اپنے احباب سے. نمبر ایک، कि आप लोग 100% हर वक्त खुश और पुरसुकून रहना चाहते हैं, या कुछ फीसद पुरसुकून और कुछ फीसद परेशान हाल रहना चाहते हैं। इस मजमे में और पूरे आलम में जो भी अक्लमंद होगा वो यही जवाब देगा कि हम 100% हर वक्त पुरसुकून रहना चाहते हैं और बेसुकूनी और परेशानी से हमको कोई मुनासिबत नहीं। हम बेवकूफ होगा जो दुख और परेशानी का तालिब होगा। 100% हम सुकून की जिंदगी चाहते हैं, लैलन व नहारन यानी रात भी दिन में भी, सबाहन व मसान और सुबह शाम भी, वफी कुल वक्त मिनल अवकात, वफी कुल लम्हत मिनल लम्हात, वफी कुल लहजत मिनल लम्हात मिनल लहजात, वफी कुल नफस मिनल अनफास। हम कोई सांस ऐसी नहीं चाहते कि जिस सांस में हमको परेशानी और बेचैनी हो। एक सवाल है, हो गया ना, इसका जवाब दीजिए कि किसके कब्जे में हमको हर वक्त बासुकून और चैन और इत्मीनान किसके कब्जे में है। तो जब अल्लाह ताला के कब्जे में हमारी हयात और मौत, हमारी इज्जत और जिल्लत, हमारी बीमारी और सेहत, हमारी मालदारी और गरीबी, हमारी तिजारत की बरकत और तिजारत में घाटा आ जाना, जिस्म और रूह की सलामती और ईमान पर खात्मे का फैसला, आलम बरज़ख में अबरार और सालिहीन के साथ इल्हाक और कयामत के दिन की सख्तियों में अर्श आज़म के साये में बुलाने का अख्तियार, और मैदान कयामत में हमारे लिए जन्नत का फैसला, तो ऐसी जबरदस्त अजीम शान बाख्तियार मालिक के खुश करने में हम 24 घंटे पुरसकून रह सकते हैं, या 70% अल्लाह ताला को कुछ रोजा नमाज तिलावत करके कुछ फीसद हम उनको खुश भी रखें, और कुछ फीसद अपने नफ्स को हराम लज्जतों से जरा बदमस्तियां और नाफरमानियां भी करते रहें। अब अपनी अक्ल से फैसला करो कि क्या कुछ देर सुकून और कुछ देर परेशानी चाहते हो भाई, मुकम्मल सुकून चाहते हो, बस इसका फैसला आपके हाथ में। नंबर दो, अगर आप किसी को बहुत अहम पोस्ट अपनी तिजारत में, सल्तनत में, कारोबार में, अपने दीनी इदारे में या दुनिया के किसी इदारे में किसी शख्स को बहुत ही अहम पोस्ट और अहम मुकाम और अहम मनसब देना चाहते हैं कि जो आपके सफर में भी सारा काम संभाले और हजर में भी, और अगर आप बीमार हो जाए तो भी आपको कोई गम न हो, सारा काम संभाले और सफर इंग्लैंड, जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड, थाईलैंड वगैरह सो जितने लैंड है आप कहीं भी चले जाए, मगर सब मामला बिल्कुल वो सब काम आपका देखभाल करता है। तो इस अखबार में जब आपने दिया तो 5 आदमी आ गए इस नौकरी को लेने के लिए, तनख्वाह भी अच्छी खासी, क्योंकि वो शेष का पूरा बदल होगा, 88 का पूरा बदल, शेष की जमा 88, भाई कौल की जमा अकवाल, हुक्म की जमा अहकाम, नूर की जमा अनवार, शेष की जमा 88। तो 5 किस्म के आदमी आए, आपने उसका उससे गुफ्तगू की, उसकी काबिलियत का की मालूमात की और उससे सवालात किए कि आप मेरे कारोबार में और मेरे जिस काम के लिए मैं आपको रख रहा हूँ, आप मेरे कितने फीसद वफादार रहेंगे कि मेरे फायदे का हर वक्त सफर हजर सामने गायबाना हमारे मफादात का तहफ्फुज़ करेंगे। ये लफ्ज मफादात जो है बहुत अहम है। जब किसी मुल्क में किसी की एम्बेसी और सफारत खाना नहीं होता तो वही के किसी सफारत खाने को हवाले कर देते हैं कि आप हमारे मुल्क के मफादात का ख्याल रखना, तो एक शख्स ने कहा कि हम आपके 70% वफादार रहेंगे, दूसरे ने कहा 80% वफादार रहेंगे, तीसरे ने कहा 90% वफादार रहेंगे, चौथे ने कहा 100% वफादार रहेंगे पूरी जिंदगी, पांचवें ने कहा कि 100% से भी ज्यादा, आप हमको 100% से भी ज्यादा वफादार पाएंगे, तो आप किसको अपना दोस्त बनाएंगे और आला दर्जे का मुकाम और उसका इंतखाब किसका करेंगे इन पांचों में। देखिए एक साहब ने जवाब दिया कि नंबर 5 का हम अपने यारी और कारोबारी और वफादारी के लिए नंबर 5 का इंतखाब करेंगे। अब 5 बंदे भी हैं जो अल्लाह ताला के हुजूर में इंतखाब के लिए खड़े हैं कि आप हमको अपना वली बना दीजिए। मिसाल दे रहा हूँ, एक अल्लाह ने पूछा कि आप हमारी बंदगी और गुलामी और हमारी फरमाबरदारी में कितने फीसद अपनी कोशिशें और मेहनतें करेंगे। एक शख्स ने कहा कि हम 70% कोशिश करेंगे कि आपके वफादार और हम आपके फरमाबरदार रहें और सुबह शाम दिन और रात में आपको नाराज न करें और नाफरमानी से आराम लज्जत को चशीद और कशीद और दीद और शुमीद न करेंगे। दूसरे ने कहा कि खुदा हम 80% आपके रहेंगे। तीसरे बंदे ने कहा कि हम 90% आपके रहेंगे। चौथे ने कहा हम 100% आपके बन के रहेंगे क्योंकि आप ही ने हमको पैदा किया, नहीं हूँ किसी का तो क्यों हूँ किसी का, नहीं हूँ किसी का तो क्यों हूँ किसी का, उन्हीं का हुआ जा रहा हूँ, हम आप ही के बन के रहेंगे ताकि जन्नत में आप हमको फतखुली सी इबादी कहें कि मेरे खास बंदों से मिलो, आपकी निस्बत आप हमें अपना समझ लें, इतना मैं इस तरह जिंदगी गुजारूंगा कि आप हमें अपना खास बंदा फरमाबरदार वफादार 100% समझेंगे। पांचवी ने कहा कि मैं 100% से भी ज्यादा वफादारी का पर जान लड़ा दूंगा, 100% से भी ज्यादा। पर्चे वगैरह क्यों देते हो भाई, किसने दिया आपको पर्चा, किसने बताई, आइंदा से तकलीर के वक्त पर्चे मत दिया करो, मजामीन जो आमद हो रही है आसमान से उस मजामीन में खलल अंदाजी मत करो, मेरी तकलीर रखी रखाई नहीं होती, मैं अल्लाह ताला से भीख मांग कर बैठता हूँ, जिसको पर्चा वगैरह देना है वो मुझसे तनाई नहीं मिले, वहां क्यों आते हुए नानी मरती है मेरे हुजरे में, अगर किसी कोई बात पूछनी है तो वहाँ बात करो, या अगर कोई मजमून के लिए दरखास्त करनी है तो मेरे पास वहाँ आके मिलो, आए तकरीर के वक्त में अगर किसी ने पर्चा दिया याद रखो उसका पर्चा फाड़ करके रख दूंगा। तुम चाहते हो कि जो आमद हो रही है अल्लाह ताला की वो मजामीन बंद हो जाए, सारे पूरी कौम का नुकसान करता है सर, सारी कौम का जितने लोग हैं सबका नुकसान किया है इस शख्स ने और पर्चा लेने वालों ने भी, मत लो किसी का पर्चा दो या ना दो, दुआ में सबको साथ रखूंगा इंशाल्लाह, जिसके दिल में जो जायज हाजत है अख्तर आखिर में सबके लिए दुआ करेगा, पर्चा देने की मुतलक कोई जरूरत नहीं है, कोई बहुत अहम बात हो तो जब तकरीर खत्म हो जाए उस वक्त पेश करो, मगर तकरीर के दरमियान में पर्चाबाजी जो है ये मजामीन में खलल अंदाजी है, पर्चाबाजी दरमियान तकरीर में तकरीर के लिए खलल अंदाजी है। और मेरी परवाजी में वो मुजिर हो रहा है, आप जानते हैं जब जहाज चलता है तो एक परिंदा भी अगर टकरा जाए, एक परिंदा भी जो कितना छोटा है जहाज के मुकाबले में, मगर बार वक्त एक परिंदा से जहाज क्रश हो गया और मशीन खराब हो गई, अगर से आपका पर्चा छोटा सा है मगर मेरे लिए वो परिंदा का काम करता है। तो पांचवें बंदे ने कहा आदाब सीखो, अफसोस से कि पर अदब नहीं सीखते लोग, उस्तादों का जो अदब नहीं करता क्या फैज हो सकता है उसको, सीखो, सीखने से अदब आएगा, जिसको देखो बहुत बड़ा लामा बना हुआ है, कि मौलाना मेरे ख्याल में ये बात सही नहीं आती। अबे तेरा ख्याल क्या हकीकत रखता है? तूने 10 साल पढ़ा किसी दारुल उलूम में, दूसरा कहीं का? एक शख्स डॉक्टर नहीं है, MBBS मेडिकल कॉलेज में नहीं उसने पढ़ा, और एक डॉक्टर से नुस्खा लिखा रहा है, मगर कहता है मेरे ख्याल में आपने जो एक कैप्सूल लिखा है आपको डबल लिखना चाहिए। डॉक्टर पर्चा फाड़ेगा नुस्खा और कहेगा तशरीफ ले जाइए। दीन को खेल समझ रखा है। अख्तर वो मुल्ला नहीं है जिसको आप अपना गुलाम बना लें। मेरे शेख ने मुझे लिखा है कि इमाम बनकर काम करना, गुलाम बनकर काम मत करना। मेरे मुर्शिद ने मुझे इंडिया से लिखा है, हरदोई से, कि दीन का काम इमाम बन के करना। मैं जब तकरीर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सलातीन के तख्त उतार मेरे सामने नीलाम होते हैं, सूरज और चांद की रोशनी में लोडिंग लोड शीटिंग आती है, लैलाए कायनात को का नमक धरता हुआ देखता हूँ। अगर सजदे में सर रख दूं, जमीन को आसमां कर दूं, अख्तर ने बुजुर्गों की जूतियां उठाई हैं, एक दिन नहीं, जवान होते ही 3 बरस तक मैं शाह मोहम्मद अहमद साहब, मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब के साथ रहा। 17 बरस आप लोगों ने रहमतुल्लाह अलैह के साथ, 10 साल उनके साथ बिल्कुल जंगल कस्बे से दूर रहा। ये मेरी गुलामी बुजुर्गों की इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएंगी। अल्लाह ताला अपने दोस्तों की गुलामी के सदके में सारे आलम की गुलामी से आजादी देता है। मैंने अल्लाह के दोस्तों की गुलामी इख्तियार की, मैं सारे आलम की गुलामी से आजाद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कोई कहीं रोक नहीं सकता, जहाँ चाहूँ सफर करूँ। मैं ये मस्जिद खुद मेरा इदारा हमको रोक नहीं सकता, ये इमामत कौन करेगा, मदरसा कौन चलाएगा, सब मैंने दूसरों के हवाले कर दिया। जिस आलम से मुझे पुकारा जाए, जिस मुल्क से मुझे कोई बुलावा आ जाए, जब चाहूं बिस्तर उठाऊं, ये जा वो जा। अल्लाह, मैंने 12 साल तक दुआ की कि या खुदा मुझको अपने कर्म से सारे आलम की गुलामी से आजादी फरमा, और मुझको सिर्फ अपनी मोहब्बत और जिक्र याद के दायरे में पाबंदी अता फरमाइए, और सारी मखलूक की पाबंदियों से आजादी नसीब फरमाइए। अस्करम अजिश्क नाजुलम मकुन, ऐ खुदा अपनी याद के अलावा, अपने इश्क मोहब्बत के अलावा मुझे किसी काम में मशगूली न दीजिए। अस्करम अजिश्क नाजुलम मकुन, अपने कर्म से सिवाय इश्क मोहब्बत के मुझको माजूल न कीजिए। और जुद बजिक्र खेश मशगूलम मकुन, और अपनी याद के अलावा मुझे दुनिया में किसी काम में मशगूली न होने दीजिए अपनी याद के अलावा। यही वजह है कि अख्तर तबीब है, हकीम सईद जो मरहूम थे उनकी डिग्री मेरी डिग्री एक है। मैंने तिब्बिया खालिद में बाकायदा, मगर कभी आपने हमको दवाखाने में नहीं पाया होगा। कोई तो बात है कि जो मेरे कल्ब को अल्लाह ताला ने अपने जंजीर मोहब्बत में जकड़ा हुआ है। हजरत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि ऐ दुनिया वालों सुन लो, खैर आ जंजीर जुल्फे बिल बरम, अल्लाह ताला की मोहब्बत की जंजीर के अलावा अगर 200 जंजीर आरी पर दरम, 200 जंजीरें लाओगे तो अक्सर उसको तोड़ देगा। ये मारूमी का गुलाम है अक्सर। मैं उस शेख का गुलाम हूँ, शेख अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह का, जिनको जब फारिग होके आए तो देवबंद जैसे बड़े इदारे के लिए सदर मदरसी के लिए इंतखाब किया गया। इतने बड़े आलिम थे, और आते ही एक जगह हजरत ने इमामत कबूल कर लिया। शुरू की बात है, बाद में तो फिर कोई बात ही अजीब थी, फिर तो सारे आलम से मुस्तानी थे। मोहल्ले वालों ने हजरत से कहा कि फला की रूह निकल रही है, आप चल के सूरह यासीन शरीफ पढ़ करके उसकी रूह निकाल दीजिए। एक आया, दो आया, तीन आया। अगर आप शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह को देखते, जो 500 काफिरों के लिए तनहा काफी थी, 10 साल तलवार और लाठी सीखी थी मेरे शेख ने, 10,000 हिंदू जो रावण जलाया जाता है उसमें एक रुकू कुरान शरीफ का कहीं से लगा दिया। हजरत ने अकेले लाठी लेकर फरमाया कि ये पर्चा कुरान शरीफ का टुकड़ा मेरे हवाले करो, वरना मेरी मैं तुम कम से कम 500 काफिरों को मारकर तब शहीद दूंगा। फौरन हाथ जोड़ करके तमाम 10,000 हिंदू हाथ जोड़कर कहा, मौलाना जल्दी लीजिए आप, हम जानते हैं कि हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। बनारस से 14 पहलवान बुलाया फूलपुर के अंदर हिंदुओं ने, कि आप मेरे इन पहलवानों से अपनी लाठी दिखाएं, तब हम जाने कि आप हजरत ने लाठी चलवाई अपने शागिर्द से, माहिर था वो। हजरत तो बड़े माहिर थे मगर शागिर्द को फरमाया कि पहले मेरे शागिर्द से मुकाबला करो, फिर अब्दुल गनी अपना हाथ दिखाएगा। उसने जो लाठी चलाई तो उनके 14 पहलवान लाठी लेकर मार रहे थे, मगर उसने वो दांव दिखाया कि किसी का कान फट गया, किसी की नाक टूट गई, किसी के हाथ तक टूट गए, सब के सब भागे। जब 14 पहलवान बनारस के हिंदू भागे तो खसरे फूलपुर के हिंदुओं ने कहा कि मौलवी साहब का मदरसा ये मदरसा नहीं है, अरे ये तो पुलिस लाइन है। एक ईसाई ने, एक सिख ने हजरत ईसा अलैहि सलाम की शान में गुस्ताखी की और हजरत थाना भवन से वापस जा रहे थे और बंदूक उसके हाथ में और हजरत के हाथ में लाठी, उसका नाम था अब्दुल जब्बार। लाठी सरसों के तेल में डूबी रहती थी, बहुत वजनी, 500 आदमियों के लिए तनहा काफी थे शेर, ये हजरत थानी रहमतुल्लाह ने लिखा। उसको दौड़ा लिया हजरत ने, बंदूक लेके स्टेशन मास्टर के कमरे में छुप गया। हजरत ने प्लेटफार्म पर फरमाया कि अगर तुम मर्द हो आओ मुकाबले में मेरी लाठी थे, क्या और जिताए छुपे हुए हो स्टेशन मास्टर के। सारा रेलवे अमला हैरान हो गया, काम हाथ जोड़ के काम साहब माफ कर दीजिए। एक दफे एक रेल के डिब्बे में, हिंदुस्तान की बात कह रहा हूँ, रेल के डिब्बे में हजरत दाखिल हुए, सारे हिंदू बैठे, जगह थी मगर दिया नहीं मेरे शेख को जगह, दाढ़ी देखकर। हजरत ने फौरन गाय का पाया निकाला, पका के साथ ले गए, और बहुत लंबा लंबा पाया होता है गाय का, और पाया निकाल कर गाय का और चूसना शुरू किया। सब हिंदू भागे वहाँ से और कहा राम राम, भागे कि गौ माता मेरी अम्मा को खा रहा है। सब भागे, पूरी सीट खाली कर दी। हजरत बाखाना लेट गए, कहा बैठने की जगह नहीं थी। मैं खुद साथ था, 8-10 पंडित कहीं जा रहे थे, हरदोई हजरत मौलाना अब्राह साहब यहाँ तशरीफ ला रहे थे, मैं भी साथ था। हजरत उसने पूछा हजरत से कि आप कहाँ जा रहे हो, मेरे शेख ने जवाब दिया मैं हरदोई जा रहा हूँ। हजरत ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, उसका हरिद्वार जा रहा हूँ, अकल करके जवाब दिया। हरिद्वार हिंदुओं का पूजा और कोई मंदिर है खास, और मुंह इतना टेढ़ा किया मेरे सामने का बात मेरे सामने की कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, बहुत अकल से कहा। जैसे उसने हरिद्वार, हजरत ने कहा फिर ना मैं ऐसे शेख का गुलाम हूँ। एक स्टेशन पर जवान जवान हिंदू लड़के रंग छोड़ने के लिए आए, होली का जमाना था। हजरत ने सीना ताना और गर्दन की रख फुलाई और आंखें बड़ी बड़ी की और लाठी लेके दौड़ाया, फरमाया कि अभी मैं तुम्हारे खून से होली खेलूंगा। फूलपुर की तहसील की छोटी सी मस्जिद थी, हिंदुओं ने उसको गिराने की कोशिश की। बड़े बड़े नेता, MLA, लीडर कांग्रेस के वहां पहुंचे, कई हिंदू काफी मजमा। हजरत ने कहा चलो देखो कैसे गिराते हैं, कोई नहीं था सवा अख्तर के। हजरत ने फरमाया सुन लो तुम लोग, मालदार भी हो, लीडर भी हो, नेता भी हो, कांग्रेस के बड़े बड़े MLA और क्या क्या हो, अगर इस मस्जिद में हाथ लगाया तो याद रखो अब्दुल गनी हूँ, तुम्हें इसकी बुनियाद में दफन कर दूंगा, तब तुम इस मस्जिद को गिरा सकोगे। ऐसा भागे सब लोग, मेरे आंखों के सामने से वाकयात है। एक हिंदू लड़की पर एक मुसलमान ने वो मुबतला हो गया उसके इश्क में, हिंदू मुस्लिम राइट का खतरा हो गया पूरे कस्बे फूलपुर। हिंदू ने कहा मुसलमान जितने घर हैं हम सबको आग लगा देंगे। हजरत तलवार लेकर कस्बे के बीच में एक कुआं था, ऊपर जगत थी उसकी, उस पर खड़े हुए बाजार में ऊपर, और तलवार दिखाकर फरमाया कि जिसने तुम्हारी लड़की के साथ इश्कबाजी की है उसको तुम ले जाओ, उसको जो चाहो सजा दो, लेकिन अगर किसी बेकसूर मुसलमान की तरफ नजर उठाया तो अब्दुल गनी की तलवार होगी और तुम्हारी गर्दनें होंगी। सारे हिंदुओं ने हाथ जोड़ के कहा मौलवी साहब बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, उस शेख का गुलाम हूँ, मुझे कोई गुलाम बनाने की कोशिश न करे, तुम्हारे करोड़ों रुपये हो या सल्तनत हो, अक्सर सल्तनत के हाथ से भी बिक नहीं सकता, न सूरत शाम से बिक सकता इंशाल्लाह का। तो अल्लाह सुभान व तआला ने ये 5 बंदों का जो इंटरव्यू लिया, फीचर है ये मेरा इस टीचर की तरफ से। तो जो जिसने कहा कि हम 100% से ज्यादा फरमा बरदार रहेंगे, आपको एक लम्हा भी नाराज नहीं करेंगे, हम जान दे देंगे मगर आपको ना खुश करके हराम खुशियां नहीं लाएंगे। अपना दिल मेरा, मैं बंदा हूँ, मेरा दिल भी बंदा है, मैं दिल को आपकी मर्जी के ताले रखूंगा, हमारी कोई खुशी नहीं जब तक आप खुश न हो। सर से पैर तक मैं आपका बंदा हूँ, बेजन्नी आजा यही वो बेजन्नी अजदा यही व बेजन्नी अनफास यही व बेजन्नी लम्हाते ही व लहजाते ही व औकाते ही। हमारा हर लहजा हर सांस हमारी आपकी गुलामी के तौक के अंदर पाबंद फरमाबरदारी है। हम आपको नाराज करके हराम लज्जत नहीं ले सकते, चाहे खुशी की हालत हो या गुस्से की हालत हो। तो बताओ अल्लाह ताला किसको सबसे बड़ा वली बनाएगा। तो आज इस मुबारक महीने में इरादा कर लो, मरना है या नहीं, जिस पर हम मर रहे हैं छूटने वाले हैं, चाहे बीवी बच्चे हो, हलाल है जायज है, तिजारत भी जायज है, मगर तमाम जायज चीजें एक दिन हमसे छूटने वाली है। इन जायज चीजों पर मौला की मोहब्बत को गालिब रखो, पानी कितने ही ज्यादा हो मुजिब नहीं कश्ती के लिए, बशर्ते कि पानी कश्ती में दाखिल न हो। आपकी दुनिया आपके लिए कुछ मुजिब नहीं, खरबपति हो जाइए, अरब करोड़ क्या अरबपति खरबपति, सल्तनत भी आपके पास हो जाए कुछ मुजिब नहीं, बशर्ते कि आपकी अल्लाह की ईमान और दीन अल्लाह की मोहब्बत की कश्ती में आपकी दुनिया का पानी दाखिल न होने पाए। अगर 10,000 लीटर पानी है जमीन से 10,000 मीटर, मगर कश्ती ऊपर जा रही है, पानी नीचे रहे तो कश्ती चलेगी, लेकिन अगर पानी उसके अंदर दाखिल हो जाए तो एक नौकर रखा जाता है कि जो डिब्बे से पानी निकालता रहता है कश्ती से, वहां तो नौकर निकालता है, यहाँ आपका आका निकालेगा शेख। आप खानकाह में जाइए तो दिल में जितना पानी आया हुआ है दुनिया का देखेंगे आप इंशाल्लाह कि पानी निकला हुआ मिलेगा। हजरत मुजद्दिद अल-हिसानी इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह मक्तूबात इमाम रब्बानी में सरहिंदी है ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने औलिया के अंदर और साहिब निस्बत के अंदर ये खासियत रखी है कि अगर गुनाहों के पहाड़ भी हों अंधेरे छाए हों, आप जाके देखो किसी अल्लाह वाले के पास या किसी अल्लाह वाले के गुलामों के पास। ये दूसरा जिंदा अपने लिए कहता हूँ, मेरी गुलामी में दुनिया तारीख शक नहीं कर सकती। तो गुनाहों के अंधेरों के पहाड़ उड़ जाएंगे, ये सोहबत वो चीज है। ऐ साइंसदानों, अपनी साइंस पर नाज करने वालों, तुम देसी आम को लंगड़ा आम बनाकर फख्र करते हो, तुमने एक पौधा को एक पौधे से बदल दिया, इंसानियत तो नहीं आई उसको। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इंसान आम इंसानों को वली अल्लाह बनने का पैगंबर कारी कि देसी आम लंगड़े आम की पैवंद से लंगड़ा आम बन सकता है, तो देसी दिल हमारे दोस्तों के कल्ब से पैवंद खाकर ज्वाइंट होकर मिल करके उनकी सोहबत से औलिया अल्लाह का दिल, उनका दिल औलिया अल्लाह के दिल से तब्दील हो सकता है। ये कुरान पाक की टेक्नोलॉजी है, कुली मा सादिकीन की तफसीर है। बशर्ते कि देसी आम और लंगड़े आम में लूजिंग न हो, पत्ती सख्त बंदी हो, किसी अल्लाह वाले से दिल ऐसा मिलाओ कि उसकी मर्जी और मशवरे के खिलाफ न चलो। मशवरे के खिलाफ परहेजी करने वाला सूफी ये जालिम है और लूजिंग इसकी ढीला ताल्लुक है। जबान से आशिकी के क्या के ये खिदमत बदनिया ये आशिकी नहीं है, अल्लाह ताला को आशिकी पसंद नहीं है कि एक आदमी शेख का पैर हाथ दबा रहा है, उसको नाश्ता करा रहा है, बजाहिर दुनिया देखती है कि सबसे बड़ा खादिम है। वल्लाह कहता हूँ अगर ये नाफरमानी की आदत नहीं छोड़ता तो अल्लाह की नजर में नालायक है। शेख क्या कर सकता है, शेख अपनी औलाद को भी वली अल्लाह नहीं बना सकता, तुमको कैसे बना देगा। कितने ही डॉक्टर बड़ा है अमरीका और लंदन की डिग्री हो और पेचिस लगी हुई बार बार मोशन, वो कह रहा है देखो नहारी पाया और कबाब मिर्चा मत खाना और ये छुप छुप के खा रहा है। बोली शिफाजार होगा, चाहे डॉक्टर के सर में पेड़ भी लगाता हो, हाथ पैर भी दबाता हो, डॉक्टर के कुत्ते को भी छीछड़ा लाता हो, बिल्ली को भी छीछड़ा लाता हो, सारी दुनिया कहेगी ये शख्स डॉक्टर का बहुत बड़ा खिदमत गुजार है, लेकिन बदतमीजी की वजह से डॉक्टर के फैज से महरूम मरेगा। याद रखो शेख का असली खादिम असली आशिक वही है जो अल्लाह की नाराजगी जिसके लिए तुमने शेख को किया उस अल्लाह को किसी और नाराज न करो, उसकी नाफरमानी में मुबतला न रहो। अगर शेख देखे या न देखे लेकिन जब अल्लाह ताला देखता है कि जालिम शुक्र की नाफरमानी करता है तो शेख का दिल भी अल्लाह के कब्जे में है, उसके दिल को भी नाराज कर देता है। अगर चाहते हो शेख मुझ पर खराबा मेहरबान रहे तो मालिक को मेहरबान रखो, रायमाना जी को नाफरमानी से एहतियात करो। जान की बाजी लड़ाने का नाम तसव्वुफ है, लोमड़ियानापन का नाम तसव्वुफ नहीं है, हिजड़ा बनने का नाम तसव्वुफ नहीं है, अल्लाह पर जान देने का नाम तसव्वुफ है। अल्लाह पर जान देना सिखाने वाला असली पीर है। खुद भी जान देता हो अपने मुरीद को भी जान देने का जज्बा पैदा करता हो। तसव्वुफ इसका नाम नहीं कि जुमेरात को बिरयानी और पुलाव खाकर बेसन पर हाथ धोकर के खा लो और फिर बेसन पर जाके साबुन में रखाओ और हाथ धो लो। बताओ बेसन का इस्तेमाल यहाँ कैसा हुआ? तसव्वुफ नाम है अल्लाह पर फिदा होना, अपने पैदा करने वाले अपने पालने वाले अपने खालिक और मालिक पर हर लम्हे हयात फिदा रहना, इस फिदाकारी को विलायत और अल्लाह की दोस्ती कहते हैं। सर से पैर तक मजाल है सर पर अंग्रेजी बाल आ जाए, मजाल है उसकी आंखें बदनजरी कर ले, मजाल है उसके गाल की दाढ़ी कट जाए, मजाल है उसकी जबान से गइबत निकले, मजाल है उसका हाथ नामहरमों और अमरतों के गालों पर फिर जाए, मजाल है उसका पैर सिनेमा वीसीआर की तरफ चला जाए, मजाल है उस दावत में पहुंच जाए जहां रिकॉर्डिंग और गाना बजाना हो रहा है और खिलाफ शरीयत काम हो रहा है, खानदान नाराज होने दो। हम ही जानते वफा क्या है, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता वफा क्या है। बिरादरी क्या चीज है अल्लाह के सामने? अल्लाह जो अल्लाह पर क्यों खुश रखता है उसकी बिरादरी इतनी बड़ी है कि जालिम जो कहते हैं ना कि आप मेरे गुनाहों के मजलिसों में नहीं आएंगे, शादी ब्याह में रिकॉर्डिंग में नाफरमानी में फोटोकशी में और मूवी जो बनती है तो हम लोग बायकॉट कर देंगे, तुम बेबिरादरी के हो जाओगे। वल्लाह अख्तर कहता है रमजान के महीने में कि अल्लाह वालों की बिरादरी कितनी बड़ी है, उनकी बिरादरी के साथ सबसे पहले अल्लाह है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर सहाबाए किराम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, उस सारे आलम के औलिया अल्लाह है उनके साथ, उनकी बिरादरी कितनी पाकीज़ा कितनी कीमती है। आप बताओ एक शख्स है जिसकी बिरादरी में बादशाह है, एक शख्स है 1000 भंगी है उसके साथ, बताओ किसकी बिरादरी तगड़ी है? 1000 भंगी अपने गुह का कनेक्शन झाड़ू लिए खड़े हैं कि देखो हमारी तादाद कितनी है और तेरे साथ तो खाली बादशाह है। एक शख्स के साथ सूरज है, एक शख्स के साथ सूरज है और करोड़ों सितारे ताना दे रहे हैं कि तेरे पास क्या है, देख अक्सरियत मेरी मजारती और मेरी जमहूरियत। वो कहेगा मेरा एक सूरज काफी है, जब मेरा सूरज निकलेगा 12 बजे तो तुम लोग मुंह छुपा के वोट देने के काबिल नहीं रहोगे। काशी हमारे अल्लाह ताला की पहचान हो जाती तो कभी नाफरमानी हराम लज्जतों से नमक हरामी न करते। आप बताओ एक सयाह है शेर को नाराज किए हुए और 1,00,000 बंदरों को खुश रखता है, ये अकलमंद है? क्या 1,00,000 बंदर शेर की हमले से और शेर के चीरने और फाड़ने से बचा सकते हैं? अल्लाह की कुदरत साहिरा अगर कैंसर पैदा कर दे, गुर्दे के प्लांट फिल्टर नाकाम कर दे तो क्या सारा आलम की बिरादरी हमारे गुर्दे ठीक कर सकती है? क्या आजों पर मरते हो और अपने नफ्स दुश्मन पर बोलो नफ्स की गुलामी जिल्लत है यानी क्यों नफ्स के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हो? नफ्स ने कहा है नाच देख लो गाना देख लो, इस लौंडे को देख लो इस लौंडिया को देख लो वीसीआर को देख लो सिनेमा को देख लो, जो नफ्स कहे हुजूर हुजूर कर रहे हो। नफ्स के गुलामों की कोई इज्जत है? क्यों सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि नफ्स दुश्मन है तुम्हारा। क्या नबी के फरमान ऐ सादात और उम्मत मुस्लिमा, क्या नबी के फरमान की तुम्हारे दिमाग में कोई जगह नहीं है कि तुम अपने नफ्स को दुश्मन समझो और ईमान लाओ सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि नफ्स बड़ा दुश्मन है? दुश्मन के कहने पर हुजूर हुजूर कर रहे हो और दोस्तों को छोड़ा हुआ है? अल्लाह दोस्त है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा प्यारा नबी है, ये रास्ता छोड़कर तुम दुश्मन के रास्ते चलते हो, दुश्मन के गोद में हंसते हो। بیبی کی اس کے بری تھی اور باقی پیوستی. میرے شیخ فرماتے تھے جو اللہ کا فرمان توڑ کر اپنی نفس کی بات مانتا ہے, ذرا سوچو تو تم نے کس سے توڑا اور کس سے جوڑا. بیبی کی اس کے بری تھی اور باقی پیوستی, کس سے تم نے توڑا اور کس سے جوڑا. ارحم الراحمین سے رشتہ توڑا, نفس شیطان کی بات مانی. اور جو برادری اللہ کی نافرمانی سے خوش نہیں, اللہ کی نافرمانی کرانا چاہتی ہے, ایسی برادری ہو جو کہے داڑھی ملاؤ تمہاری داڑھی اچھی نہیں لگتی, کل کو کہے گی تمہاری ناک بھی اچھی نہیں لگتی. نکٹوں کی بستی میں پہنچ گیا ایک آدمی ناک والا, سب ناک کٹانے والوں نے کہا آ گیا نکو, آ گیا نکو, آ گیا نکو. اس نے بستر باندھا بھاگا کہ اگر یہاں میں رہوں گا تو میری ناک بھی سلامت نہ رہے گی. ہم اللہ کے عاشقوں میں زندہ رہیں گے, ہم ہجرت کر لیں گے. جو ہماری داڑھی کو اور ہمارے کلچر کو اور تہذیب کو, اتباع سنت کو اور اللہ پر فدا کاری کو برا سمجھے گا, ایسے ماحول کو ہم طلاق وہاں سے ہجرت کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جس جہاں تم میرے فرما بردار نہ رہ سکو وہاں سے تم ہجرت کر لو. ان عرضی, ان عرضی واسعہ, تم میری زمین لمبی چوڑی ہے, فتوحاج روفیہ, تم ہجرت کیوں نہیں کیا وہاں تم نے. اللہ کے دوستوں کی اور اللہ کے عاشقوں کا بھی ماحول بھی تو ہے, کیوں تم اسکول لڑکیوں کے اسکول کے قریب تم نے مکان خریدا کہ نظر تم نہ بچا سکو, کیوں شراب خانے کے قریب مکان بنایا کہ شراب پینے سے نہ بچ سکو. ہزار خیش کی بیگانہ اور خدا باشد, ہزار اپنے ہیں مگر جو اللہ سے بیگانے اور دور ہیں ہم ان کو اپنا خاندان نہیں سمجھتے. ہزار خیش کہ بیگانہ از خدا باشد, ہزار اپنے جو خدا سے بیگانے اور اللہ سے دور ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں. فدائے یکتن بیگانہ کاشنا باشد, میں اس بیگانہ جس پر جو ہمارا رشتے دار خاندار خاندان خونی رشتہ نہیں ملتا مگر بیگانہ ہے لیکن خدا سے آشنا ہے, ہم اس مرشد پر فدا ہیں. اگرچہ ہمارا میمن نہیں ہے, وہ مرشد جو ہے گجراتی نہیں ہے, میمن نہیں ہے. یہ راستہ عجیب ہے, یہ راستہ اللہ والی محبت کا راستہ گجراتی اور میمن اور پٹھان اور شیخ اور بنگالی اور سندھی اور پنجابی نہیں دیکھتا. کیوں؟ کیونکہ یہ طبقہ جنت والا ہے اور جنت میں سوا نہیں ہے. جنت میں گجراتی میمن کوئی زبان نہیں سوائے عربی زبان کے. جن کو جنت جانا ہے ان کو اللہ تعالیٰ یہی سے جنت کا ذوق اور جنت کا مذاق اور جنت کا ان کے دل میں مناسبت عطا کرتا ہے. بتاؤ جنت میں کوئی صوبہ ہے؟ وہاں تو سکی گل ہے, کوئی بولے گا؟ بخیر راگلے بولے گا اور کیم شو بولے گا؟ تمہاری طبیعت کیم شو, ہارو سے دعا چھ, سارو چھ مجھے ماں چھ, سب عربی زبان. لہذا یاد رکھو ہر مسلمان اپنا بھائی ہے, اگر جنت میں جانا ہے تو ذوق جنت ہی پیدا کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی عادتوں کو تین طلاق دو, تین طلاق اس مبارک مہینے میں. تین طلاق جب ہو جائے تو پھر دوبارہ اس عورت کو پا سکتے ہو؟ تو گناہوں کو تین طلاق دو کہ دوبارہ ان گناہوں کو گلے نہ لگاؤ. اب دس منٹ میں میں اپنی تقریر پورا کرتا ہوں, دو بجے ٹھیک ختم کروں گا انشاءاللہ, اور آئندہ بھی خیال رکھوں گا اس کا انشاءاللہ کہ دو بجے تقریر ختم ہو اور دو بجے اذان, سوا دو بجے خطبہ شروع ہو جائے, مگر اس کا اعلان نہیں لگاؤں گا تاکہ کبھی اس کے خلاف بھی بارش آ سکتی, کیونکہ دنیا کی بارش کا وقت ہوتا ہے, اللہ کی رحمت کی بارش کا وقت نہیں ہوتا. لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ معلوم ہوا اثر تک نمازی کا ختم ہو گیا. اس کا ہوش رہے گا, جس پر مرتا ہوں وہ ہوش دلانے کے لیے کافی ہے ہم کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبارک الذی, بہت ہی برکت والا ہے اللہ کہ جو میرا نام لیتا ہے اس کی زبان میں برکت آ جاتی ہے. ایک آدمی نافرمان شرابی زانی پھونک مارے کسی کے بخار اور بیماری پر, ایک اللہ والا پھونک مار دے, بتاؤ کس کا اثر ہوگا؟ جس کی زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے اس زبان میں برکت اللہ ڈال دیتا ہے, جس مکان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس مکان میں اللہ برکت ڈالتا ہے, جس زمین پر اللہ والے روتے ہیں اور ان کے آنسو زمین پر گرتے ہیں وہ زمین برکت والی ہو جاتی ہے. جس زمین پر اللہ والوں کے سجدے ہوتے ہیں وہ زمین برکت والی ہو جاتی ہے. 100 قتل کے مجرم کو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے عاشقوں کی اور میرے اولیاء اور دوستوں کی زمین پر جاؤ, تم وہاں توبہ کر لو, میں یہاں معاف کر سکتا ہوں, مغفرت کی صفت میری موجود ہے, لیکن موجود ہونا اور ہے, ظہور نہیں کروں گا. میرے عاشقوں کی زمین پر جاؤ جہاں انہوں نے ہم کو یاد کیا, جہاں محبت کے آنسو ان کے زمین پر گرے, اس زمین کے صدقے ہم تم کو معاف کر دیں گے. پیمائش کرائی, مگر پیمائش میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی کہ اگر اللہ والوں کی بستی موت آ گئی, غیر اختیاری چیز ہے, زمین اگر قریب بھی ہے, اگر اللہ والوں کی زمین قریب ہوگی گناہوں کی بستی سے تو بھی معاف کر دوں گا 100 قتل کو. یہ قیمت دیکھو اللہ والوں کے سجدوں کی اور ان کے آنسوؤں کی اور ان کے آہ و فغاں کی, کہ مٹی بھی دور ہے, زمین قریب بھی ہو جائے اللہ والوں کی تو بھی پیمائش کے وقت میں پھر اس نے موت کے وقت ذرا سا سر آگے بڑھا دیا, 1 انچ آگے اور بڑھا دیا, اللہ کو یاد آئے بندگی پسند آئی, عطائے خواجگی نے فیصلہ کر دیا, اے زمین قریب ہو جا, ایک بارش قریب ہو گئی, اللہ نے اس کو بخش دیا. تبارک الذی بیدہ الملک, جس کے جو اپنے ملک کی پوری طاقت رکھتا ہے, جب چاہتا ہے ملک رکھتا ہے, جب چاہتا ہے ملک کو زیر دار کرتا ہے اور مسجن کرتا ہے. یہ بیدہ الملک, یہ ساری سلطنت سارا عالم اللہ کے ہاتھ میں. آگے فرماتے ہیں وہو علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت حکمراں ہے اور کسی کی حکمرانی نہیں. تکبر سب بیکار, دیکھ لو انقلاب جہاں سے سبق لو. آگے فرماتے ہیں خلق الموت اور حیات, میں نے موت اور زندگی پیدا کی, موت پیدا کیا زندگی دیا. میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ اے میرے پیارے شیخ, زندگی پہلے ملتی ہے موت بعد میں آتی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں موت کو پہلے کیوں نازل فرمایا؟ خلق الموت والحیات, بتاؤ حیات پہلے ملتی ہے یا موت پہلے ملتی ہے؟ جب زندگی نہیں تو موت کہاں آئے گی؟ تو میرے شیخ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے موت کو اس لیے پہلے کیا تاکہ حرام لذتوں کے چکھنے والوں اور خدا کی نافرمانی سے, حرام لذت سے غیر شریفانہ اور کمینے پن سے ناپاک لذت کھینچنے والوں, سن لو کہ اگر تم نے موت کو یاد رکھا تو تمہاری زندگی اللہ والی رہے گی, اگر اپنا موت بھول جاؤ گے تو تم زندگی کے مقصد سے بے خبر ہو کر تمہاری زندگی ضائع ہو جائے گی. یہ موت ہماری حیات کی ضمانت ہے, شریفانہ حیات کی, اہل اللہ کے حیات کی. اس لیے موت کو پہلے بیان کر دیا کہ دیکھو زندہ زندگی دے رہا ہوں, مگر موت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا کہ ڈپارچر ہونے والا ہے, ہم یہاں کے نیشنل نہیں ہیں. زیادہ ان سے دل نہ لگانا, کھاؤ خوب, پیو خوب, پہنو خوب, مگر دل نہ لگانا, دل اللہ والوں سے لگاؤ اور اللہ سے لگاؤ, اللہ والوں سے کیوں لگاؤ تاکہ اللہ سے لگ جائے. اود کی شیشی سے محبت کرنا, اود ہی کی محبت ہے, یہ شیشیاں ہیں اللہ کی محبت کی, ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اود کا عطر بھرا ہوا ہے. ہم شیشی, جس میں ایک تولہ اود ہو شیشی کی قیمت بڑھ جاتی ہے, وہی شیشی پانی بھر دو اتنی ہی اس کی کوئی قیمت نہیں. اللہ والوں کی قیمت اس لیے ہے کہ وہ اللہ والے ہیں, ان کو نسبت ہے اللہ تعالیٰ سے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے زندگی کس لیے دی؟ کمانے کے لیے خالی؟ کروڑ پتی ارب پتی بننے کے لیے؟ مرسڈیزوں پر ہوا کھانے کے لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ میں تمہاری آزمائش کروں, امتحان روم ہے, ایگزام روم ہے, تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو, جس کی 3 تفسیر کی سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے, اے لیبلوکم ایکم اور محارم اللہ تعالی, ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں کون حرام فعل سے بچتا ہے اور کون نہیں بچتا. نمبر 2 لیبلوکم ایکم اتم و اقلم و فہما, تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم انٹرنیشنل کدھے بیوقوف ہو یا اپنی وطن آخرت سے غافل نہیں ہو کر عقل مند ہو. ایکم اتم و اقلم و فہما, تمہاری عقل مند ہو یا بیوقوف ہو کہ نیشنل یہاں کے نہیں ہو, پردیش میں زندگی تباہ کر کے وطن میں جا کے کنگال اور بالکل بھنگی بن گئے اور آخرت کی پٹائی عذاب میں مبتلا ہو گئے. نمبر 3 ایکم اسر ہو الا طاعت اللہ عز و جل, ہم اس لیے زندگی دیا ہے تاکہ میں تم کو دیکھوں کہ تم میری فرما برداری میں کس قدر سریع و سیر ہو, کس قدر تمہاری رفتار تیز رہتی, کتنا تم گناہوں سے بھاگتے ہو اور بچتے ہو, اور کس قدر ہماری عبادت پر حریص رہتے ہو. وہو علی کل شیء قدیر کے بعد دیکھو لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور, اور اللہ تعالیٰ عزیز و غفور ہے. یہاں علامہ لوسی روح المانی میں لکھتے ہیں کہ عزیز کیوں نازل کیا, कि जबरदस्त ताकत वाले हैं, अगर हम बख्श दें तो हमारी मगफरत की कदर करना, क्योंकि जबरदस्त ताकत वाला जब बख्शता है तो उसकी माफी की कदर होनी चाहिए अकलन। क्यों? क्योंकि अगर कमजोर आदमी माफ कर दे तो आप कहते हैं आप हमारा क्या कर सकते हैं, आपको तनफ्फुस है, सांस की बीमारी है, उठ के खड़े भी नहीं हो सकते, तुम मेरा क्या कर लोगे, कहोगे थैंक्स कि ठेंगा लो। लेकिन अगर तुमको ताकतवर मोहम्मद अली के लिए बहुत बड़ा ताकतवर माफ कर दे तब आप शुक्रिया अदा करते हैं। तो अल्लाह ताला चाहते हैं, अजीज मैं इसलिए नाजिल कर रहा हूँ ताकि मैं जिसको बख्श दू मेरी मगफरत की कदर करना, क्योंकि मैं जबरदस्त ताकत रखता हूँ, जहन्नम में डालने की ताकत है, तुम्हें हर अजाब की ताकत रखता हूँ। इसलिए मगफरत की सिफत बाद में नाजिल की ताकि तुम्हें कदर कीमत मालूम हो मेरी बख्शिश की, कि बहुत बड़े ताकत वाले अल्लाह से तुमको आज मगफरत मिल रही है। अगर 100,000 बंदर किसी सयाह को माफ कर दें लेकिन शेर गुर्रा रहा है, आपको कदर नहीं होगी। आप बंदरों से कहेंगे अपनी माफी अपने पास रखो, ये शेर मुझे माफ कर दे, तब मैं समझूंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत इंतकाम नहीं है। शेर हमें चीर फाड़ सकता है, ताकत वाला है। तो मालूम हुआ कि बड़ी ताकत से माफी जो है काबिल कदर है। अल्लाह ताला ने अपनी सिफत मगफरत को नहायत ही कदर कीमत के लिए अपने बंदों के दिलों में डालने के लिए सिफत अजीज को मुकदम फरमाया कि जबरदस्त ताकत वाले की तरफ से तुम्हारी मगफरत। वह अजीज उल गफूर। 1 मिनट बाकी है, अब दुआ कर लो। ये न समझो कि मैं औकात की रियायत नहीं कर सकता, इरादा कर लूं, जमीन पर सर अगर रख दूं, जमीन को अगर सजदे में सर रख दूं, जमीन को आसमा कर दूं। देखो आज कितनी मैंने वक्त की रियायत की। दुआ करो अल्लाह हम सबको अमल इस मुबारक महीने में और अर्श आजम को उठाने वाले हामिलीन अर्श फरिश्तों के आमीन के सदके में। ऐ खुदा 100% एक बंदा भी आपका यहाँ से आज वापस न जाए महरूम। अल्लाह अख्तर को, मेरे घर वालों को, आप सब सामीन और सामियात खवातीन औरतों को भी सबको वली अल्लाह बना दे, और हमारे घर वालों को भी, और मेरी आह को सारे आलम में फैला दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। अल्लाह दुनिया भी दे आखिरत भी दे और हर जायज हाजत पूरी कर दे और हर गम से निजात दे। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। देखो घड़ी देख लो।